एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खोज पर निकल रहे हैं जो शायद हम सभी कभी न कभी करते ही हैं, शांत मन की तलाश। आज की दुनिया में जहां देखिए शोर है, तनाव है और हमारा ध्यान तो बस लगातार बढ़ता रहता है, ऐसे में अंदर की शांति ढूंढना वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
और इस तलाश में ना आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। हम बात करें एक ही नाम वाली दो किताबों पर, द क्वाइट माइंड।
हाँ,
और मजे की बात यह है कि इनके लेखकों के नाम भी लगभग एक जैसे हैं, जॉन ई कोलमैन।
अरे हाँ, ये तो गजब का संयोग है।
बिल्कुल, लेकिन ये तो अलग लोग हैं और मन की शांति तक पहुंचने के इनके रास्ते भी वो काफी अलग हैं।
बिल्कुल, तो आज हमारी ज्ञान गोष्ठी का मकसद है इन दो अलग अलग नजरियों को समझना, मतलब एक जो गहरे व्यक्तिगत अनुभव से निकला है और दूसरा जो मनोविज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर कसा गया है। देखेंगे कि ये दोनों रास्ते हमें शांत मन की पहेली सुलझाने में कैसे मदद करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं आपका साथी मेजबान। तो चलिए शुरू करते हैं शांत मन की इस दोहरी खोज का सफर।
पहले बात करते हैं पहले जॉन ई कोलमैन 1923-2010 की। इनकी कहानी थोड़ी मतलब हटके है।
हाँ।
ये एक पूर्व ब्रिटिश अमेरिकी खुफिया अधिकारी थे। सोचिए, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट।
बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसका काम था बाहरी दुनिया का विश्लेषण करना, जासूसी करना, और वो भी बेहद तनाव भरी परिस्थितियों में।
सही कहा।
और यही बात है ना जो उनके नजरिए को खास बनाती है। एक जासूस जो बाहरी दुनिया की उठापटक में माहिर हो, उसका अचानक से अध्यात्म और अंदर की शांति की तरफ मुड़ना।
ये सवाल तो उठता है
कि आखिर बाहरी दुनिया में वो क्या नहीं मिला जो उन्हें अंदर खोजना पड़ा। उनका अनुभव किसी किताबी सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक बहुत बड़े मोड़ और गहरे आत्मानुभव पर आधारित है।
अब आते हैं दूसरे जॉन ई कोलमैन पर।
ओके।
ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पर रिसर्च भी करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD हैं।
हाँ, तो इनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। इसमें मनोविज्ञान है, आध्यात्मिकता है और न्यूरोसाइंस यानी तंत्र का विज्ञान भी है। एक तरह का संगम है ये।
हाँ, और इनका दृष्टिकोण काफी वैज्ञानिक लगता है ना?
हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक। ये प्राचीन तकनीकों को जैसे ध्यान और माइंडफुलनेस मतलब सचेतनता, इनको आधुनिक विज्ञान की रोशनी में देखते हैं।
अच्छा।
ये समझाते हैं कि ये चीजें सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इनका हमारे दिमाग और शरीर पर वाकई असर होता है, और क्यों होता है ये भी बताते हैं।
मतलब ये ज्ञान को सबके लिए आसान बनाते हैं।
बिल्कुल, बिना किसी खास धार्मिक चोले के।
चलिए अब जरा दोनों किताबों के मूल विचार को समझते हैं। पहली किताब जो पूर्व CIA एजेंट ने लिखी है, वो असल में उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है।
हाँ, एक ऑटोबायोग्राफी जैसी।
हाँ, उनका मुख्य तर्क ये है कि असली शांति दिमागी कसरत या बहस से नहीं मिलती।
नहीं मिलती।
ये मिलती है विपश्यना ध्यान के जरिए, जिसमें मन और शरीर की सच्चाई को सीधे सीधे बिना किसी फिल्टर के अनुभव किया जाता है।
और वो ये भी बताते हैं कि हमारे दुख की जड़ क्या है, मतलब अच्छी लगने वाली चीजों संवेदनाओं के पीछे भागना और बुरी लगने वाली चीजों से दूर भागना, उनसे घृणा उतरना। तो उनकी किताब उनके 10 दिन के विपश्यना शिविर के गहरे अनुभव पर टिकी है। कहते हैं उसने उनकी जिंदगी बदल दी।
वाह। वही दूसरी किताब जो मनोवैज्ञानिक जॉन ई कोलमैन की है, वो शांत मन को समझने और पाने के लिए एक तरह की कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड है।
हाँ, बिल्कुल।
उनका कहना है कि शांत मन का मतलब ये नहीं कि विचार पूरी तरह रुक जाएं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि ये एक गहरे जागरूकता और वर्तमान पल में जीने की स्थिति है।
एकदम सही।
वो मानते हैं कि हम सबके अंदर ये शांत रहने की क्षमता है, पहले से है, लेकिन आज की भाग दौड़ और दिमागी शोरगुल ने ना उसे ढक दिया है।
हाँ, ये तो महसूस होता है।
तो ये किताब बताती है कि कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान की ट्रेनिंग से हम इस क्षमता को दोबारा जगा सकते हैं और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसमें वो न्यूरोसाइंस वाला एंगल भी है।
हाँ, खास बात यही है, वो इसे न्यूरोसाइंस से भी जोड़ते हैं कि कैसे ही अभ्यास हमारे दिमाग की वायरिंग तक को बदल सकते हैं।
अच्छा।
हाँ,
तो ये दो अलग फ्रेमवर्क हमारे सामने है। एक है जैसे आपने कहा सीधी छलांग लगाकर अनुभव के समंदर में उतरना, और दूसरा है शायद नक्शे और कंपास के साथ धीरे धीरे उस समंदर तक पहुंचना।
क्या बात है, बढ़िया कहा। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पहले उस जासूस की यात्रा को देखते हैं, उन्हें की किताब में जो 10 दिन की विपश्यना शिविर का वर्णन है वो काफी तीव्र अनुभव लगता है।
हाँ बिल्कुल, और वो अनुभव आसान नहीं था। पहले कुछ दिन तो आप सोचिए सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान टिकाने की कोशिश में निकल गए। उसे आनापान कहते हैं।
आनापान।
लेकिन मन को तो वो पागल बंदर कहते हैं, वो टिकता ही नहीं था।
हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है ध्यान में।
बिल्कुल, और साथ में घंटों बैठने का शारीरिक दर्द, बोरियत, वो सब अलग। ये शुरुआती संघर्ष ही दिखाता है कि हमारा मन असल में कितना बेचैन और अनियंत्रित है।
फिर असली विपश्यना शुरू हुई।
हाँ, चौथे दिन से, मतलब पूरा शरीर में होने वाली अलग अलग संवेदनाओं को महसूस करना, बिना ये सोचे कि अच्छी है या बुरी, बस साक्षी भाव से देखना।
साक्षी भाव
मतलब
बस जानना, जैसे खुजली हो रही है तो जानना कि खुजली हो रही है, दर्द है तो जानना कि दर्द है, आराम है तो जानना कि आराम है, प्रतिक्रिया नहीं करनी, अच्छा रिएक्ट नहीं करना।
हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, हमारी पुरानी आदतें जिन्हें संस्कार कहा गया है।
संस्कार।
हाँ संस्कार, मतलब हमारे मन में जमी हुई पुरानी प्रतिक्रियाओं के पैटर्न, जैसे गुस्सा, डर, लगाव।
ओके।
सोचिए जैसे किसी तालाब में पानी शांत हो जाए तो नीचे जमी हुई गंदगी दिखने लगती है ना।
हाँ।
वैसे ही जब ध्यान में मन थोड़ा शांत होता है तो ये पुराने संस्कार, ये दबी हुई भावनाएं वो सतह पर आने लगते हैं।
लेखक बताते हैं कि ध्यान के दौरान बहुत तीव्र भावनाएं और दर्द उघरे उनके अंदर।
बाप रे, तो फिर क्या किया?
तकनीक वही थी, इन पर भी प्रतिक्रिया नहीं करनी, बस देखना है कि ये भी अस्थाई है, बदलते रहते हैं।
अच्छा, ये भी परमानेंट नहीं है?
बिल्कुल नहीं, यही अनित्य यानी इम्परमनेंस का सीधा अनुभव था। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है हर पल।
लेखक का कहना है कि जब हम इन उठने वाली संवेदनाओं और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं तो इन पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये एक तरह से मन की गहरी सफाई है।
ये तो बहुत गहन प्रक्रिया लगती है।
हैं, और इस कठिन प्रक्रिया के अंत में 10वें दिन उन्हें मेट्टा भावना यानी सबके लिए प्रेम और करुणा का अभ्यास कराया गया।
मेट्टा।
हाँ, और नतीजा एक ऐसी गहरी शांति और हल्कापन जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये अनुभव की ताकत थी, किताबों से नहीं खुद के अंदर झांकने से मिली शांति।
वाह, ये तो हुई अनुभव की गहराई की बात। अब आते हैं दूसरे जॉन कोलमैन के वैज्ञानिक और व्यवस्थित नजरिए पर। उनकी किताब कैसे शांति का नक्शा पेश करती है?
हाँ, तो उनकी किताब अध्यायों में बटी हुई है और वो शांति के अलग अलग पहलुओं को खोलती है। वो शुरू करते हैं मानसिक शोर की समस्या से, मतलब हमारे दिमाग में जो लगातार बकबक चलती रहती है।
हाँ, वो तो चलती ही रहती है।
बिल्कुल, फिर वो बताते हैं कि जागरूकता हमारे विचारों से अलग है, जैसे आसमान हमेशा रहता है, बादल आते जाते रहते हैं, है ना? वैसे ही जागरूकता स्थिर है, विचार आते जाते हैं।
ये अच्छी उपमा है, और इसमें वो न्यूरोसाइंस वाला हिस्सा।
वो क्या था?
हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है, स्थिरता का तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ऑफ स्टिलनेस।
वो बताते हैं कि ध्यान वाकई हमारे दिमाग को बदलता है।
सच में?
हाँ, ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने, फैसला लेने में मदद करता है,
हाँ हाँ,
वो मजबूत होता है, और एमिग्डाला, जो डर और तनाव जैसी भावनाओं का केंद्र है, वो शांत होता है।
अरे वाह, ये तो विज्ञान और अध्यात्म का संगम हो गया।
बिल्कुल, फिर वो उन रुकावटों की बात करते हैं जो हमें शांत नहीं होने देती, जैसे हमारा शांति से ही डरना या समाज का हमेशा व्यस्त रहने का दबाव डालना।
हाँ, ये भी होता है।
फिर वो प्रैक्टिकल तकनीकें सिखाते हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना, बॉडी स्कैन करना, और वो जोर देते हैं कि ये एक स्किल है, इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है, जैसे कोई कसरत सीखते हैं।
और ये सिर्फ ध्यान करते वक्त के लिए नहीं है, सही कहा ना, वो इसे रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ते हैं।
हाँ हाँ, यही उनकी किताब की खासियत है। वो बताते हैं कि कैसे इस सीखी हुई शांति और जागरूकता को काम पर, रिश्तों में और रोज के छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा,
मतलब शांति सिर्फ किसी आसन पर या बंद कमरे में पाने की चीज नहीं है, ये जीने का एक तरीका है।
तो अब अगर हम दोनों किताबों के मुख्य संदेशों को देखें और उनकी तुलना करें तो कुछ जरूरी बातें उभरती हैं। पहला तो यही शोरगुल वाला मन।
हाँ,
पहले लेखक इसे अपनी निजी पीड़ा की तरह महसूस करते हैं, एक अंदरूनी लड़ाई की तरह, जबकि दूसरे लेखक इसे आज के समाज की एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल समस्या की तरह देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं।
सही बात है, और ये शोरगुल वाला मन हम सब पहचानते हैं ना, चाहे वो ऑफिस के टारगेट का प्रेशर हो,
बिल्कुल,
या बच्चों की परीक्षा का तनाव हो, या बस सड़क पर ट्रैफिक का शोर। दोनों लेखक मानते हैं कि ये शोर हमारी शांति छीन लेता है, बस उनके देखने का लेंस अलग है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है अनुभव बनाम ज्ञान। पूर्व जासूस कहते हैं कि भाई किताबी ज्ञान बेकार है अगर वो आपको शांति न दे पाए। उनके लिए तो सीधा अनुभव विपश्यना ही सब कुछ है, लेकिन मनोवैज्ञानिक लेखक वो अनुभव को वैज्ञानिक समझ और रिसर्च से जोड़ते हैं। वो क्या के साथ क्यों और कैसे को भी अहमियत देते हैं।
ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या सिर्फ अनुभव काफी है या उसे समझने और सहेजने के लिए एक ढांचे की भी जरूरत है।
हाँ, शायद दोनों का संतुलन जरूरी है।
शायद जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, वो अनुभव है, लेकिन अगर हम समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मनोवैज्ञानिक समझ है, तो शायद हम उसे बेहतर तरीके से संभाल पाएं।
सही कहा। तीसरा थीम है जागरूकता या स्थिरता का स्वभाव। पहले लेखक के लिए ये मन की सफाई और प्रतिक्रिया न करने, मतलब तटस्थता से मिलने वाली अवस्था है, जैसे किसी ऑपरेशन के बाद मिली राहत।
हाँ, एक तरह से अर्जित की हुई अवस्था।
जबकि दूसरे लेखक कहते हैं कि जागरूकता हमारी स्वाभाविक अवस्था है, वो पहले से मौजूद है, बस शोर ने उसे ढक दिया है।
अच्छा।
और इसे एक स्किल की तरह निखारा जा सकता है। ये नजरिया शायद ज्यादा उम्मीद बंधाता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं लानी, अपने अंदर ही खोजनी है और उसे तराशना है।
ये तो है।
और चौथा अनित्यता, मतलब हर चीज का बदलना।
हाँ, इम्परमेनेंस।
पहले लेखक के लिए ये विपश्यना से मिली एक गहरी सच्चाई है जो हमें मोह और दुख से आजाद करती है।
और दूसरे लेखक इसे जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने और भावनात्मक रूप से लचीला बनने से जोड़ते हैं। रेजिलियंस,
लचीलापन।
हाँ, जब हम ये समझ लेते हैं कि सुख दुख, अच्छा बुरा, सब अस्थाई है, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को ज्यादा शांति से झेल पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि बदलाव से लड़ने की बजाय उसके साथ बहना कैसे है।
दोनों किताबों में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। पहली किताब पूर्व CIA एजेंट वाली, उससे एक विचार है, तकनीक वास्तविकता को वैसी ही देखना है जैसी वो है, न कि जैसी आप उसे देखना चाहते हैं।
बहुत गहरा।
मतलब बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए चीजों को जस का तस देखना सीखना, ये तटस्थ अवलोकन की ताकत है।
और दूसरी किताब मनोवैज्ञानिक वाली, उससे ये बात बहुत अच्छी लगी, शांत मन खाली नहीं बल्कि भरा हुआ होता है जागरूकता, उपस्थिति और संभावना से।
वाह।
ये इस आम धारणा को तोड़ता है कि शांति मतलब दिमाग का सुन्न हो जाना या खाली हो जाना। नहीं, ये तो एक ज्यादा जीवंत, ज्यादा जागरूक अवस्था है।
ये दोनों विचार, हालांकि अलग तरह से कहे गए हैं, कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा करते हैं, मतलब अपने मन के खेल को समझना और उससे ऊपर उठकर जागरूकता में जीना।
बिल्कुल। और यहीं से हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ व्यवहारिक सबक निकाल सकते हैं।
हाँ, वो जरूर बताइए।
जैसे जब गुस्सा या चिंता महसूस हो, तो पहली किताब की तरह शरीर में उठने वाली सेंसेशंस को महसूस करें, और दूसरी किताब की तरह प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल ठहर जाएं।
एक पॉज लेना।
हाँ, वो छोटा सा पॉज भी बहुत फर्क ला सकता है।
और फोकस बढ़ाने के लिए।
हाँ, आजकल ध्यान भटकना तो आम बात है।
हाँ, उसके लिए पहली किताब का सांस पे ध्यान, आनापान, या दूसरी किताब की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, दोनों ही कारगर हैं। ये हमारे मेंटल मसल्स को मजबूत करते हैं। बुरी आदतों या क्रेविंग से निपटने में भी मदद मिल सकती है। पहली किताब सिखाती है कि इच्छा को सिर्फ एक संवेदना की तरह देखो, उस पर अमल मत करो।
अच्छा।
दूसरी किताब बताती है कि ध्यान से सेल्फ कंट्रोल पड़ता है।
और रिश्तों में? रिश्तों में भी ये काम आ सकता है, अपनी जल्दबाजी वाली प्रतिक्रियाओं को समझना, जैसे पहली किताब में है, और दूसरों को ध्यान से सुनना बिना जज किए, जैसा दूसरी किताब में बताया गया है।
हाँ, सचेत होकर सुनना।
और सोचिए, अगर हम ट्रैफिक जैम जैसी रोजमर्रा की झुंझलाहट वाली स्थिति में भी इन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी सांस पर ध्यान दे सकें, या शरीर की बेचैनी को बस महसूस कर सकें, तो शायद वो स्थिति उतनी तनावपूर्ण न लगे। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात रही, वो ये कि कैसे दो इतने अलग बैकग्राउंड के लोग, एक जासूस और एक मनोवैज्ञानिक, अपनी यात्रा के अंत में एक ही मंजिल की बात कर रहे हैं, शांत मन।
हाँ, ये कमाल है।
ये दिखाता है कि अंदर की शांति की तलाश कितनी बुनियादी और मानवीय है, और पहली किताब में जो अनुभव की गहराई है वो वाकई सोचने पे मजबूर करती है।
और मुझे दूसरी किताब का वैज्ञानिक और व्यावहारिक नजरिया बहुत पसंद आया। ये शांति को कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर बनाता है।
हाँ, सुलभ बनाता है।
हाँ, ये दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें रास्ता दिखा सकते हैं। ये ज्यादा सुलभ लगता है कि हाँ, मैं भी अभ्यास करके अपने मन को शांत करना सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ।
तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मन को शांत करने का कोई एक ही सही रास्ता है, या फिर ये दोनों नजरिए, एक गहरा निजी अनुभव और दूसरी वैज्ञानिक समझ और रोजमर्रा की प्रैक्टिस, एक संतुलित और भरपूर जीवन जीने के लिए दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकरथ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।